श्लोक संख्या है 35 और इसको आप हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। निशमया कल हो गया था कौन से 35 साल यदा गृहग्रस्त इव क्वचे हसति आक्रदन्ते ध्यायति वंदते जनम मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायण इति आत्ममति गतः त्रप यदा गृहग्रस्ता इव क्वचिदस्ता त्याक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणे त्वात्मगति मति गत्रपा यदा गृहग्रस्त इव क्वाचिद्धस। इसका शब्दार्थ पीछे दोहराइए। यदा जब गृहग्रस्त प्रेत द्वारा सताया गया इव सदृश क्वचित कभी हसते हंसता है आक्रंदते जोर से चिल्लाता है ध्यायति ध्यान करता है वंदते नमस्कार करता है जनम सारे जीवों को मुहु निरंतर श्वसन तेजी से सांस लेते वक्ति बोलता है हरे हे प्रभु जगतपते हे संपूर्ण संसार के स्वामी नारायण हे नारायण इति इस प्रकार आत्ममति परम भगवान के विचारों में पूर्णतया मग्न गतात्रप लज्जा रहे। शब्दार्थ के बाद इसका अनुवाद जो है इस प्रकार है। जब कोई भक्त प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वह हंसता है और उच्च स्वर से भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति लापरवाह हो जाता है और पागल व्यक्ति की तरह जोर से हरे कृष्णा ऐसा करता है, हे भगवान हे ब्रह्मांड के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। जब कोई बाह्य सामाजिक रीतियों की परवाह ना करते हुए हर्षोत्रेक में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो यह समझा जाता है कि वह आत्ममति है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुड़ गई है। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो ये जो पूरा स्कंद है इसमें जहाँ से शुरुआत हुई है ये भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु जिन्होंने कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया और अब जो है प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठियों को जो अपने स्कूल में जो उनके साथ पढ़ते थे वो लोगों ने पूछा कि ये सब ज्ञान तुम्हें आया कैसे, क्योंकि तुम हमारे ही तरह समान आयु के हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर भी हमारा एक ही है और हमने कभी देखा भी नहीं कि कोई अलग से आके तुम्हें ट्यूशन दे रहे हैं या अलग से आके कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये सब ज्ञान और ये सब कैसे आया? बड़े आश्चर्यचकित थे सारे बच्चे। तो प्रहलाद महाराज ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये सारा ज्ञान उस अवस्था में सीखा जब मैं माता के गर्भ में था। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब मेरे पिताजी तपस्या के लिए गए हिरण्यकश्यप, तो उस समय देवताओं को लगा कि हिरण्यकश्यप जिसने कि पूरा का पूरा सारे के सारे लोग सर पर उठा रखे हैं, इतना अत्याचार कर रखा है, देवता लोग सारे थर्राते थे, कांपते थे उससे, ऐसा हिरण्यकश्यप अब पिता बनने वाला है तो क्या होगा? कि एक तो पहले ही हिरण्यकश्यप की वजह से हमारे पूरे संसार में जो है कलह मचा हुआ है ना, सब लोग डर रहे हैं, असुरों की शक्ति बढ़ गई है। अगर इसकी संतान भी आ गई तो एक और एक 11 होते हैं, है ना? तो जैसे पिता निकलेंगे वैसे संतान होगी, है ना? जनरली ऐसे ही सोचा जाता है। तो पहले तो एक ने हमारी हालत खराब कर रखी है ना? बताते हैं कि इंद्र इत्यादि को भी जो है सफाई करने आना पड़ता था हिरण्यकश्यप के प्रांत मतलब राज्य में, जब वो अपनी भृगुटी के ऊपर करते थे ऐसे तो दिक्कत हो जाती थी। लेकिन अभी स्थिति क्या थी कि हिरण्याक्ष मर चुका था, हिरण्यकश्यप अब देवताओं से और विष्णु से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर रहा था, तो उन्हें पता था ये असुर जो है इतना बलशाली इतना शक्तिशाली होकर आएगा कि हमारी हालत खराब कर देगा, तो क्या करना चाहिए, इसके पुत्र को भी मार देना चाहिए जब तक कि वो आए। तो फिर कयादु जो उनकी वाइफ थी उनको देवता लोग ले जाने लगे कि भी इसको मार देते हैं, जैसे संतान बाहर आएगी हम मार देंगे। तो नारद जी क्योंकि सब कुछ जानते थे, त्रिकालदर्शी भक्तों का गुण है कि त्रिकालदर्शी होते हैं, वो पिछला और अब का और आगे का भी सब कुछ जानते हैं, और उनके पास वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी नारद जी के पास कि कब भगवान का अवतार होने वाला है, कब क्या करना है। और जब कभी कुछ भगवान की योजनाओं के अनुसार घटित नहीं होता, वैसे तो होना वैसे ही चाहिए, होता भी वैसे ही है, तो ऐसे एन समय पर नारद मुनि जी पहुंचकर भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए कुछ ना कुछ कर देते थे ताकि वो लीला ठीक प्रकार से हो, है कि नहीं? जैसे जब कंस के पास वसुदेव आए अपने पहले पुत्र को लेकर, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि अरे मेरे जीजा जी हैं, मैंने इनको बोला था कि तुम्हारे 8 पुत्रों को मारूंगा, इन्होंने मुझे अपने शब्द भी दिए थे कि मैं सबको लेकर आऊंगा तुम्हारे पास, तो मेरे तो दुश्मनी 8वें से है, पहले से थोड़ी है, तो पहले को छोड़ देना चाहिए। तो बड़े खुश हुए, उनको वापस भेज दिया। लेकिन नारद जी ने समझाया, क्या समझाया, कि कोई भी हो सकता 8वां, तो पहला वाला भी 8वां हो सकता, अगर गिनो तो वैसे अलग भेजते समझाया उन्होंने। तो देखने में लगे कि नारद जी ने जो है सारे बच्चे मरवा दिए, लेकिन कथा कुछ इस प्रकार थी क्योंकि वो जो 6 पुत्र थे वो कहीं ना कहीं पीछे कथा है कि जो शापित होकर आना पड़ा और उनको फिर मर को वापस जाना पड़ा, तो ऐसा होना था उनके साथ, फिर इसलिए फिर उन्हें लाइन में लेकर आया कथा। उसी तरह यहाँ पर भी कयादु के पुत्र को मारना चाहते थे, लेकिन नारद जी पहुंच गए और नारद जी उनको आश्रम में लेकर आ गए और उसके बाद उनको ज्ञान देने लगे, भक्ति का सारा ज्ञान दिया। कयादु माता सुनती थी सब कुछ और नारद मुनि जी की सेवा में लगे रहते थे, और इधर जो माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे वो सारी कथा को सुनते रहे। माता का तो फिर भी ध्यान नहीं रहा क्योंकि जैसे बताते हैं प्रहलाद महाराज जी कहते हैं क्योंकि स्त्रियों का जो है स्मरण शक्ति कहें या बुद्धि कहें या किसी भी चीज़ को आध्यात्मिक टॉपिक्स को ग्रैब करने की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए कहते हैं सब भूल गई, बट मुझे माता के गर्भ में सब याद रहा। तो माता के गर्भ में हम समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है, ऐसा नहीं कि जब हम लोग बच्चे को प्री केजी स्कूल्स में भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं और उसके बाद या जब एडमिशन कराते हैं जिसके लिए हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, बड़ी बड़ी डोनेशन देनी पड़ती हैं, तब बच्चे का ज्ञान शुरू होता, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे का ज्ञान तो माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, उसके संस्कार जो हैं माता के गर्भ की अवस्था से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी बच्चे के जीवन में चरित्र में बहुत बड़ा प्रभाव उस समय का रहता है जब वो माता के गर्भ में था। और जैसे कई बार बताते हैं ना कि बचपन की स्थिति में सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है नॉलेज को ग्रैप कर सकता है, ऐसी अवस्था में 5-5, 8-8 लैंग्वेजेस सीख सकता है उस उम्र में। तो जो माता के गर्भ में है तब तो बिल्कुल ही पवित्र है वो, और ऐसी परिस्थिति में जबकि उसको उसकी डेवलपमेंट के माता के गर्भ में डेवलपमेंट होने के बाद माता के गर्भ में 7वें महीने में जब उसको 100 जन्म भी पिछले जो कुछ विशेष आत्माएं होती है 100 जन्म याद आ जाते हैं कि मैं कहाँ था, क्या था, किस किस योनि में गया था, और अब उसको लगता है कि बाप रे बाप मैं फिर से माता के गर्भ में हूं और फिर से बाहर आने वाला हूं, तो भगवान से प्रार्थना करता है मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। और ऐसी परिस्थिति में जब वो ज्ञान मिल रहा है उसको, तो सारा ज्ञान लिया। अभिमन्यु का नाम सुना होगा आपने, अभिमन्यु भी माता के गर्भ में है। जब अर्जुन ने सबको समझाया सुभद्र को, तो अंदर सब कुछ सीख गए कि व्यू रचना कैसे तोड़नी है, अंदर कैसे जाना है, जहां तक का सुना था वहां तक का याद था। और महारथियों के उस व्यू रचना में अच्छे से अच्छे लोगों को छका कर मार कर वो अंदर भी पहुंच गए, लेकिन अधूरा ज्ञान था, पूरा नहीं सीखा था, इसलिए बाहर नहीं आ पाए, है ना। तो इस प्रकार जो है माता के गर्भ में जब शिशु होता है, ऐसे समय पर माताओं को चाहिए कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करें। हो सकता है उनके सामने नारद मुनि नहीं आएंगे, हो सकता है उनके सामने कोई ऐसा शुद्ध भक्त नहीं आएगा जो उनको कथा सुनाएगा भगवान की, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों के आधार पर कोई भी माता शिला प्रभुपाद जी का संग कर सकती है उनके ग्रंथों का अध्ययन कर कर। और जब उन ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण करेंगे या कथाओं का श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से माता के गर्भ में जो शिशु है उसके अंदर आध्यात्मिक संस्कार आएंगे, और जो बाहर वो इस भौतिक जगत में जब आएगा तो आध्यात्मिक चेतना के साथ आएगा। लेकिन उसके बाद भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि जब गर्भवती थी महिला तब केवल वो थोड़ा सा धार्मिक दिखती थी, थोड़ी धार्मिक होने का प्रयास करती थी, उसके बाद की भी जिम्मेवारी बताते, पहले 4-5 साल तो माता ही पहली गुरु होती है बच्चे की, और ऐसी परिस्थिति में उसको माता की पूरी जिम्मेवारी बनती है जब उसको आध्यात्मिक गुणों से अभिभूत करें। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैंने सब कुछ माता के गर्भ में सुना सीखा, और क्या क्या ज्ञान सीखा, तो वो सारा का सारा ज्ञान अब इन श्लोकों के द्वारा प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, भक्ति की सारी विधियां बता रहे हैं। किस प्रकार पिछले कुछ श्लोकों में जो है उन्होंने चर्चा की बता रहे हैं, थोड़े से श्लोकों पहले से ले रहे हैं। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, तो पहले साफ शब्द लिख रहे हैं प्रमाणिक, ऑथराइज्ड, रिकॉग्नाइज जिसे बोलते हैं, क्योंकि गुरु भी कम नहीं है हमारे देश में, और पहले तो आध्यात्मिक गुरु होते थे, अब जो थोड़ा बहुत योगा भी सिखाता है वो भी गुरु हो जाता है, और इस तरह गुरुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है हमारे देश में। और किसी न किसी व्यक्ति को, क्योंकि सब लोगों ने सुना है बिना गुरु के गति नहीं है, ये तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो कौन से गुरु हों ये लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रमाणिक गुरु की को स्वीकार करना, अर्थात शास्त्र के हिसाब से प्रमाणिक गुरु बताए गए हैं। अगर पता नहीं है तो भक्तों से पूछें कि प्रमाणिक गुरु किसे बोलते हैं, वो बताएंगे। फिर भी कुछ बातों के लिए कि जो कृष्ण का भक्त हो, जो वैष्णव हो, जो अपने को दास समझता हो और भक्त को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता हो, और विशेषकर पद्म पुराण के अनुसार 4 प्रमाणिक संप्रदायों से एक संप्रदाय से हो, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है, इन 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय का गुरु होना चाहिए, और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए, और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित हैं। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। फिर कह रहे हैं, इन कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव का दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा करने से कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। और जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चित रूप से ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जब कोई भक्त प्रेतग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वह हंसता है, उच्च स्वरों में भगवान के गुणों का कीर्तन करता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज पहले तो बता रहे हैं कि किस प्रकार अधोश्रद्धा तथा साधु संग, जिस प्रकार भगवत भक्ति की, क्योंकि भक्ति के भी ऐसा नहीं कि बस हम भक्ति करते हैं, जो जनरली लोगों के दिमाग में रहता है भक्ति को लेकर कि भक्ति क्या है, तो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक करना चाहते हैं, कुछ व्रत रख लिया, किसी तीर्थ स्थान पर हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि भक्ति है क्या। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के विभिन्न प्रकार के लेवल्स बताए हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ता है, भक्ति क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति, अर्थात 64 वैसे भक्ति के अंग बताए गए हैं भक्तों के द्वारा, रूप गोस्वामी जी के द्वारा। उन 64 में बताया गया है तार मध्य श्रेष्ठा नवदा भक्ति। 9 प्रकार की जो ये विधि हमने बताई, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, ये 9 जो है इन 64 में सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनना शुरू करता है, श्रवण कीर्तन और कीर्तन करना शुरू करता है, स्मरण शुरू करता है, तो ये नवदा भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है। राजा अम्बरीश थे, उन्होंने अपने जीवन से दिखाया, राजा होते हुए भी उन्होंने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये सारी की सारी नवदा भक्ति के अंगों का पालन किया। राजा होते हुए भी किस प्रकार भगवान की कथा में उनकी रुचि थी, किस प्रकार वो हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, किस प्रकार भक्तों का आलिंगन करते थे, किस प्रकार भगवान की कीर्ति का गान करते थे। तो इस प्रकार नवदा भक्ति के अंगों का जब पालन करना शुरू करता है व्यक्ति, तो इसका पालन करते हुए भी 9 स्टेजेस आती हैं भक्ति के, अलग अलग लेवल्स। पूर्व जन्म के आधार पर प्राप्त हुई श्रद्धा तामसिक, राजसिक, सात्विक श्रद्धा होती है, है ना। कई बार बोलते हैं कि कुछ भक्त बताते हैं कि भक्तों के संग से श्रद्धा डेवलप होती है, और कई जगहों पर बताया गया किस प्रकार कि कुछ श्रद्धा तो ऑलरेडी होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जुड़ने की। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा अधो श्रद्धा तथा साधु, श्रद्धा है तो फिर वो साधुओं के संग में भी आता है। पूर्व जन्म की जो सुकृतियां या पुण्य या श्रद्धा जो उसकी थी, उसके आधार पर उसको साधु संघ प्राप्त होता है, और साधु संघ से जुड़ने के बाद, गुरु, प्रमाणिक गुरु को ग्रहण करने के बाद जो हमने पढ़ा अभी, तो फिर वो गुरु के आदेशों का पालन करता है, उसको भजन क्रिया प्राप्त होती है कि क्या भजन करना है, क्या आज्ञाएं पालन करनी है। फिर ऐसा भक्त अपने अनर्थों की निवृत्ति करता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर बताया गया। तो जो जिन 6 अवगुणों की वजह से इस संसार में हमारा पुनरागमन होता है सदैव, काम, क्रोध, लोभ, भगवत गीता में तो इन तीनों चीजों को नरक का द्वार बताया गया, अर्थात जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कहां वास करता है? हाँ, और अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि ये गुण तो सॉरी अवगुण तो हमारे अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। इसका मतलब क्या है कि अपना तो उधर कंफर्म टिकट है कि नहीं? काम वासनाएं, काम इच्छाएं सबके अंदर है कि नहीं? क्रोध सबके अंदर है कि नहीं? हम जब बच्चों से पूछते हैं कई बार किस किस को गुस्सा आता है तो बच्चे भी हाथ खड़ा करते हैं। स्कूल में बच्चों को हम कहीं पूछते हैं तो सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। हम कहते हैं किस किस को गुस्सा आता है, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। नेचुरली बच्चों को भी गुस्सा आएगा, उसने किससे सीखा है गुस्सा? माँ बाप से सीखा है। और कई बार माता पिता बोलते बेटा गुस्सा दिखा दे, एक बार गुस्सा दिखा दे बच्चे को। क्या करता है बच्चा फिर? वो मुट्ठी बंद करता है, ऐसे ऐसे कर दिखाता है। माता पिता बड़ा खुश होते हैं। कहां का द्वार है ये? तो हमें लगता है ये गुण है, एक सदगुण है, गुस्सा दिखाना सदगुण है। और माता पिता को जब देखता है कैसे क्रोध दिखा रहे हैं एक दूसरे को, कैसे आग बबूला हो रहे हैं, तो बच्चा सीखता है कि हाँ कब कब कैसे कैसे कहां कहां क्रोध करना है। लोभ, ये तो बच्चा बचपन से देखता है ना, माता पिता के अंदर लोभ देखता है। किस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति भाग रहा है ना। तो ये सारे अवगुण जो हैं, काम क्रोध लोभ और फिर मोह किस प्रकार है, ये सारी चीजें, तो ये सारे अवगुण अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू होती है जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहकर उनके आदेश अनुसार भजन क्रिया को प्राप्त करता है, फिर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि इस प्रकार की सेवाओं में लगता है। और जब ऐसा करता है तो कुछ समय के बाद जो ये अनर्थ थे उसके जन्मों जन्मों से जो उसको इस संसार में धकेल रहे थे, जिसका कि निवारण नहीं हो पा रहा था, काम क्रोध लोभ इत्यादि का, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नियमित रूप से जप करने से ऐसा अवगुणी व्यक्ति भी उसके अंदर के सद्गुण भरने लगते हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार धीरे धीरे उसका काम इच्छाएं अब समाप्त हो रही हैं या कम हो रही हैं। क्रोध जब वो एक दिन में पहले 10 बार करता था, अब पवित्र नाम के जप के भगवान कृष्ण के संसर्ग में आने से उसके ये अनर्थ खत्म हो रहे हैं और अब उसको क्रोध आसानी से नहीं आता, या आता है तो 2-3 बार आता है, कुछ समय बाद तो खत्म भी हो जाता है। लोभ, वो समझ जाता है कि इस संसार में अगर मैं लोभ करता रहा जिसके कि कोई एंड नहीं है, तो ऐसा लोभ मुझे मेरा सर्वनाश कर देगा। कि किस प्रकार व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उन वस्तुओं को, उस जमीन पर अपनी फोटो चाहता है, उस धन को बैंक में रखना चाहता है, और इस प्रकार की चीजें वस्तुएं इकट्ठी करके ये सोचता है कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो गया। लेकिन नहीं देखा जाता कि जिसके पास इस प्रकार की वस्तुएं अधिक हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं होता, वो हमेशा डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है। और इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी मृत्यु के पश्चात इस इकट्ठी की गई चीज में से कुछ साथ नहीं ले जाता, ऐसा होता है क्या? आपको लगता है? मैं कई बार पूछता हूं, इतना बेवकूफ तो नहीं होगा इंसान, होगा क्या कि इतना कुछ इकट्ठा करे और उसमें से कुछ साथ ना जाए? अगर कुछ ना कुछ है तभी तो इकट्ठा कर रहा है, कितना ले जाता है? हाँ जी, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि लोग पागल हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं, हैं? नहीं, आप थोड़ी इकट्ठा करते हो, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं जो आगे बैठे हैं। भाई जो हम इकट्ठा करते हैं उसमें से कितना परसेंट लेके जाते हैं? हाँ जी, आप भी यही, आप सहमत है मतलब माताओं से सहमत है? तो आपको लगता है कि हम इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इतना इन सब चीज़ों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें से जो पता है कि कुछ नहीं जाना साथ में, तो क्या लगता है आपको क्या बोलना चाहिए? हैं, हमारे जीवन का कितना समय लगता है इसको इकट्ठा करने में? एक दिन में कितने घंटे लगाते हैं? आजकल तो 12 हो गए, ठीक है, चलिए 12 घंटे एक दिन के लगाते हैं। मतलब अपनी लाइफ का हम लोग बहुत बड़ा, क्योंकि पढ़ाई भी इसी में आ गई ना जी, पढ़ाई किस लिए कराते हैं? 8 घंटे स्कूल, 4 घंटे ट्यूशन, 12 घंटे आजकल तो 6 घंटे ट्यूशन होती है, तो वो भी टाइम लेना पड़ेगा और ये सब भी टाइम लेना पड़ेगा। और कब तक की जॉब होती है, कब तक का काम करता व्यक्ति? रिटायर्ड लाइफ तो 50 तक वैसे है शास्त्रों के हिसाब से, पर चलो हम 60 मान लेते हैं, गवर्नमेंट उसको भी बढ़ाने की चाहती है ना, तो 60-70 तक, 80 तक भी रिटायर नहीं होता आदमी। आपने देखा होगा, मतलब उस लाइफ तक भी व्यक्ति कहता नहीं, अभी भी दुकान, अभी भी मकान, अभी भी झगड़े। वो कई बार हम लोग लेक्चर में सुनाते कि 90 साल की स्त्री ने अपने 60 साल के बेटे का वध करवा दिया था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चक्कर में। तो सोच कर देखिए, मतलब 90 तक भी फुल स्टॉप नहीं लगता, और उन सब वस्तुओं के लिए, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा, उन सब चीजों के लिए जिसमें से कुछ साथ नहीं जाना। तो ये जो लोभ है ये खत्म नहीं होता, और लोभ की वजह से व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी सुखी महसूस नहीं करता इस जीवन में भी। एक अलग से फील तो आता उसको कि हाँ मेरे पास अब इतना है, बुरे समय पे काम आएगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा ले, बुरा समय ले फिर। हम एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें पता चला कि व्यक्ति बचपन से लेकर अंतिम समय तक जितनी जिन विषयों के लिए चिंता करता है, उसमें से 90% चिंताएं तो आती नहीं है। जिन विषयों के लिए चिंता करता है, ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए, और फिर हर प्रकार की समस्याएं संसार में आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अनर्थ है हमारे, ये भजन क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है उसका केंद्र बिंदु होता है भगवान। ऐसे समय पर जब व्यक्ति अनर्थों की निवृत्ति कर लेता है, मतलब अनर्थों की निवृत्ति का मतलब है कि जो काम क्रोध लोभ, काम का मतलब है भौतिक इच्छाएं और काम वासना, और काम क्रोध लोभ इत्यादि जब समाप्त हो जाता है, समाप्त तो नहीं कह सकते, क्लेश मात्र रह जाता है, लेकिन निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति आ जाता है जो 5th स्टेज है, और उस निष्ठा के स्तर पर एक किस्म से वो लिबरेटेड स्टेज पर होता है। मतलब उसको अब इस संसार में मोह नहीं रह गया, वो बुद्धिमान हो गया, उसको पता है कि मेरा जीवन किस लिए है, मुझे अपना समय किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे उसके बाद, ऐसी स्थिति के बाद जब वो भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, श्रवण करता है, तो उसके अंदर भगवान के नामों को सुनने के लिए या भगवान की कथा करने के लिए और रुचि उत्पन्न होती है। भगवान के नामों को सुनने के प्रति रुचि का उत्पन्न होने का मतलब यह है कि अब उसको इस संसार के जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं या जो यहां की न्यूज है उसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता, और उस रुचि के बाद अब उसको भगवान के नामों में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। आसक्ति लेवल बताया गया इसके बाद, ऐसा समय जब वो आसक्त हो जाता है, जिस प्रकार हम लोग अभी आसक्त हैं इस संसार में, इसका एकदम उल्टा, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। एक कामी व्यक्ति को काम वासना को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार हमेशा उन विषयों की तरफ चिंतन करता है, उन विषयों को पढ़ता है, उन विषयों की तरफ देखता है, हर समय चिंतन करता है, उसको बोलते हैं आसक्ति। एक लोभी व्यक्ति जिस प्रकार हर समय धन का चिंतन करता है, धन को गिनता है, धन का इन्वेस्टमेंट करता है, धन के विषय में सोचता है, उसको बोलते हैं आसक्ति। युवावस्था में जिस प्रकार एक लड़की एक लड़के के प्रति या एक लड़का एक लड़की के प्रति सदैव चिंतन करता है, 20 साल का 25 साल का माता पिता का प्रेम सब कुछ खत्म हो जाता है केवल एक हफ्ते में, ऐसी आसक्ति। तो तो इसे बोलते, मतलब जब व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही चीज रह जाती है, उस लेवल को बोलते हैं आसक्ति का लेवल। अभी इस प्रकार की जो हम बता रहे हैं निष्ठा या रुचि या आसक्ति, अभी हमारा एकदम उल्टी साइड पर है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना, इस संसार के प्रति ये सारी चीजें। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब आसक्ति के बाद भाव की स्थिति आती है, जब व्यक्ति को भगवान के नामों के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान के गुणों और लीलाओं के प्रति विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है, उनको सुनने के लिए वो कहता है कि मेरा, मेरे दो कान कम है, मुझे लाखों कान चाहिए, मेरी एक जीवा कम है भगवान का गुणगान करने के लिए, मुझे लाखों जीवा चाहिए, इस प्रकार की प्रार्थना करता है। उस टेस्ट को हम समझ भी नहीं सकते, इसलिए ये एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं कि जिस प्रकार मटेरियल, भौतिक एग्जाम्पल, कि जिस प्रकार इस तरह के लोगों को तो हम देखते ही है ना, कि जिसका इस संसार में यहां के विषयों से संग है, आसक्ति है, तो भाव की स्थिति, और उसके बाद उस भाव की स्थिति में तो व्यक्ति के अश्रुपात होना, उसके बालों का खड़े हो जाना, उसके मुंह से मतलब फेन निकलना, जमीन पे लोटपोट हो जाना, ये भाव की स्थिति है। भगवान उसको दर्शन भी देते हैं उस स्थिति में, क्योंकि उसने नवदा भक्ति का पालन किया है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, और अब वो क्योंकि भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के गुणों में आनंद मिलना शुरू हो गया, और अब स्थिति पे आ गया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो चैतन्य महाप्रभु का शिष्याष्टकम है, उसमें जो 8 श्लोक हैं, उन 8 श्लोकों को भगवान इस नवदा भक्ति के जो लेवल्स हैं, ये सॉरी 9 स्टेप्स जो हम बता रहे हैं, इसमें उन्होंने इन 8 अंगों को इसके साथ जोड़कर बताया है, और आखिरी के 2 श्लोक जो हैं प्रेम स्तर के बताए, जिसमें बताया है शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में जब ये पूरा का पूरा जगत शून्य दिखाई देता है, शून्य का मतलब फिर यहां कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, ऐसी परिस्थिति में आज के श्लोक में बताया कि व्यक्ति, जैसे आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति को कभी अगर कोई भूत पकड़ ले या कुछ आत्मा उसके अंदर आ जाए, देखा आप लोगों ने किसी ने, हाथ खड़ा कर सकते आपने, अच्छा कई लोगों ने देखा, क्या स्थिति होती है उस समय व्यक्ति की, वो अपने को पहचानता नहीं है, वो दूसरे को भी नहीं पहचानता, और क्या करता है, कभी हंसता है, बोलता है, जोर जोर से चिल्लाता है, मार दूंगा या कुछ भी करो या मुझे बचाओ, इस प्रकार की। अभी हम लोग कहीं गए थे तो हमने देखा एक मंदिर के बाहर इसी प्रकार कुछ लोग इकट्ठे थे, और 2-3 महिलाएं नाच रही थी बाल खोलकर, और ढोल बज रहे थे, तो मैंने आज्ञा मांगकर 30-35 सेकंड का एक वीडियो बनाया उनका, कल परसों की बात है। तो हम देख पा रहे थे कि किस प्रकार वो महिला जो है वो अपने आपे में नहीं थी, और इस प्रकार लोग, अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा उसको पागल बोलेगा, लेकिन हमें पता है उसको भूत ने पकड़ लिया या उसके अंदर कोई और आत्मा है। कई बार देखा गया होगा कि कई किसी के अंदर आत्मा आ जाती है ना, छोटी सी लड़की होती है, वो भी कैसे बोलती है, मुझे भूख लगी है है ना, देखा है आप लोगों ने, उसके अंदर से कोई और बोल रहा होता है, जोर जोर से चिल्लाना, हंसना, रोना। तो इस संसार में जब किसी को कोई भूत पकड़ लेता है तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं, उसी तरह बता रहे हैं कि वो हमें समझ नहीं आता। उसी तरह जब कभी कोई व्यक्ति भक्ति के इस तरह के उच्च स्तर पर होता है तो वो भी हंसता है, बोलता है, भगवान के गुणों का जोर जोर से व्याख्यान करता है, लेकिन सामान्य जन, हम जैसे लोग उसको समझ नहीं पाते, हमें लगता पता नहीं क्या हो गया। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना होगा, हमने भी सुना था कि एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, अचानक उन्होंने ये घोषणा कर दी या लोगों ने कह दिया कि ये तो जो है गोपी हो गए आज से, तो वो ऑफिस आते थे गोपी ड्रेस पहन के चूड़ियां का पहनना, श्रृंगार करना और ये सब कुछ शुरू कर दिया था, तो उनको निकालना पड़ा, कहते भाई क्या कर रहे हैं, पता चले सारे पुलिस वालों को गोपियां बना देंगे, कल मुश्किल हो जाएगी देश चलाना। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो उस स्तर पर था इसलिए उसने कुछ ऐसा किया अचानक, ना कभी उन्होंने कुछ जप किया, ना कोई तप किया, ना कुछ किया और अचानक ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया, तो वो हम बोल सकते हैं गॉस्टली हॉन्टेड बोल सकते हैं उस व्यक्ति को। भाई श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब नहीं किया, प्रमाणिक गुरु की शरण में नहीं गई, तो श्रद्धा अनर्थवृत्ति निष्ठा ये सब आसक्त ये सब नहीं है, इस लेवल पर आया नहीं, वो सीधा भाव के लेवल के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो रूप गोस्वामी जी ने इसलिए ये नवता और भक्ति और ये 9 लेवल ऑफ डिवोशनल सिम्टम्स इसलिए बताए ताकि कोई भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मूर्ख ना बना सके। ये किस्म का थर्मामीटर है भक्ति जांचने का, है ना। तो ज्यादातर लोग श्रवण कीर्तन और सॉरी श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस पर होते हैं अधिकतर, अधिकांश। जो सब लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर से, और इस संघर्ष करते हुए जब वो प्रमाणिक गुरु के संघर्ष में रहकर करता है, उनके आदेशों का पालन करते हुए, तब उसके अनर्थों में कमी आनी शुरू होती है, उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती। तो जो लोग इस प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं बिना किसी भक्ति के बैकग्राउंड के या कुछ आर्टिफिशियली दिखाने का भी प्रयास करते हैं, तो ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर व्यक्ति को इस दृष्टि से देखें। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ से बाहर आए तो जंगल की तरफ चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको था कि भाई माया है संसार में, भगवान को भूलने के लिए हर तरफ वातावरण तैयार है। तो माता के गर्भ से बाहर आते ही, पहले तो बाहर ही नहीं आ रहे थे, 13 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। अब सोचिए, बोला गया कि आइए बाहर, वो कहते नहीं, अगर बाहर आऊंगा तो यहां का संसार, तो फिर तो एश्योरेंस मिलने के बाद वो बाहर आए कि ठीक है तुम्हें माया नहीं तंग करेगी। तो जैसे ही बाहर आए उसके बावजूद भी कहते अगर माया नहीं भी तंग करेगी तो भी घर में क्या करूं, तो भी जंगल की तरफ चले गए। नग्न अवस्था में थे, 16 साल के बालक, इतना आकर्षक रूप उनका, और व्यासदेव जी जो कि उनके पिता हैं, वो भागे उसको लाने के लिए। अरे मेरा बेटा भाग रहा है जंगल की तरफ, तो उसके पीछे भागे उसको लाने के लिए वापस। लेकिन आगे किसी तालाब में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था, तो जब सुखदेव गोस्वामी महाराज वहां से निकले तो उन्होंने कुछ हलचल नहीं करी, उन स्त्रियों ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, उनको लगा ठीक है। लेकिन जैसे ही वहां पर व्यासदेव जी आए तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। उनको बड़ा अजीब लगा, फिर भी मेरा 16 साल का लड़का, यंग बॉय है ना, वो जब निकला तब तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे देख के तुम ऐसा कर रहे हो। तो वहां पर पता चलता है, बताते हैं कि क्योंकि व्यासदेव जी वैसे तो भगवान के इनकार्नेशन ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि गृहस्थ जीवन में हैं और उनको स्त्री का भेद और यह सब है, तो इसलिए उन्होंने अपने तन को ढकड़ा। लेकिन जब तक सुखदेव गोस्वामी जो थे उनको, वो एकदम शुद्ध भक्त थे भगवान के, पैदाइशी शुद्ध भक्त है ना, वैसे तो पैदाइशी पर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लिबरेटेड थे, उनके हाव भाव भंगिमाओं से पता था कि ये शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको देखकर उनके अंदर, सुखदेव गोस्वामी के अंदर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। जो लिबरेटेड सोल्स होती हैं, जो मुक्त जीवात्माएं होती हैं, वो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, वो तो हर जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, हर जीवात्माओं को भगवान का दास देखते हैं। लेकिन जो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है उनको भेद करना पड़ता है, और जो ऐसी स्थिति में है उनको भी भेद करना पड़ता है कई बार, इन लोग जन समाज के दिखाने के लिए। राय रामानंद जो थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वास्तव में तो वो श्रीमती राधा रानी की अंतरंग पार्षद थी, लेकिन वो क्या सेवा करती थी, जो जगन्नाथ जी के लिए मतलब क्या बोलते थे उनको, देवदासियां जो थी उनके शरीर को नहलाना सवारना ये सब करते थे, मतलब वो थे पुरुष लेकिन स्त्री वो करते थे। अब कोई व्यक्ति देखे तो बोले अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त उनके जहन में उनके मन में उनके हृदय में कहीं गंदगी नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और वो सामने वाले को एक भक्त के रूप में एक भगवान के अंश के रूप में पवित्र आत्माओं के रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो कर पाए। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो उन्होंने भी एक जगह बोला, जब किसी ने उनको इमिटेट करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि मैं 100 स्त्रियों के समक्ष, नग्न स्त्रियों के समक्ष भी जप कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने अपनी काम इच्छाओं को काबू कर रखा है, इसलिए पूरा संसार मेरे चरणों पर है, और इसलिए नव युवक और नव युवतियां, एक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर पर झुर्रियां भी हैं, चल नहीं सकते, हाइट भी छोटी है, देखने में भी बहुत सुंदर नहीं है, ऐसे नव युवक और नव युवतियां भी श्रील प्रभुपाद से आकर्षित हो गई, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण है, उनकी बातों को मानने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार हो गए, और पूरे विश्व भर में उनके लिए प्रचार करने के लिए निकल पड़े। यह है कृष्ण भक्ति का आकर्षण। तो जो व्यक्ति बता रहे हैं कि जिसके अंदर शुद्ध भक्ति है, ऐसा भक्त हो सकता है उसकी कार्य क्रियाएं मुद्राएं हमको ना समझ आए। चैतन्य चरितमानस में कहा गया है, जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया मुद्रा वाक्य विघ्न न बुझाए। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो चुका है, ऐसे भक्त की क्रियाएं मुद्राएं वाक्य शब्द भी हम समझ नहीं सकते, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं समझ सकता। और कई बार ऐसे भक्तों को तो यह पता भी नहीं होता कि मैं कौन हूं, मतलब कहां पर हूं, क्या हूं, किस स्थिति में हूं। जैसे यहां गोस्टली हॉन्टेड का एग्जाम्पल दे रहे, वैसे एक शराबी का एग्जाम्पल दिया गया श्रीमद् भागवतम में, कि जब कोई व्यक्ति पूर्णतः मदिरा का पान कर बहुत अधिक मात्रा में घूम रहा हो, उसको कुछ नहीं पता होता मैं कौन हूं, कहां मेरा घर है, कहां मैं जा रहा हूं, मेरे कपड़े कैसे हैं, गंदे हैं, कहां गिर गया मैं, वस्त्र पहने हैं नहीं पहने हैं, कुछ पता नहीं होता। उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त कई बारी ऐसे सिम्टम्स, ऐसे क्रियाएं उनकी होती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त है, स्वयं भगवान उसकी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, उनकी इंद्रियों को अपने वश में ले लेते हैं और खुद कंट्रोल करते हैं, और फिर जब तक कि उनका देह समाप्त नहीं होता ये, तब तक भगवान स्वयं उनकी इंद्रियों के नियामक बनकर उनके कार्यों को पूरा करते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनका देह सिद्ध हो चुका है भगवान की भक्ति में, तो वापस वो भगवान के धाम की ओर चल पड़ते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी को हम बता रहे हैं, और फिर सभी युवक पत्थर मारने लगे उनको देखकर कि निवस्त्र जा रहे हैं, स्त्रियां उनके पीछे पड़ गई। लेकिन जैसे ही वो सभा में पहुंचे जहां परीक्षित महाराज थे, सारे लोग खड़े हो गए उनको देख, उनके शरीर से निकलता हुआ दिव्य तेज देखकर, तब वो सब बच्चे भी भाग के सब भागे कि हम कोई गलती कर रहे हैं। जड़ भरत महाराज हृदय से सब कुछ जानते थे कि मुझे भगवान का चिंतन करना है, भक्ति करनी है, बट बाहर से नहीं शो करते थे। तो एक जड़ भरत, जड़ क्यों बोलते हैं, जड़वत रहते थे, लाइक स्टोन, कोई मूवमेंट नहीं दिखाते थे, कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करते थे, इस संसार के टॉपिक्स को लेकर, इस संसार में होने वाली गतिविधियों को लेकर स्त्री को लेकर, पुरुष को लेकर, धन को लेकर, धन और पत्थर भक्त के लिए एक समान होता है ना? तो उनका कोई मतलब नहीं था इस संसार से। उनको उनके भाई लोग खेत में खड़ा करते थे उसके लिए, चिड़िया भगाने के लिए, ऐसे खड़े हो जाओ भाई, ऐसे खड़े। खाने के लिए कहते थे, जो सब कुछ बच जाता, भूसी होती थी वो खिलाते, ये खाओ, वो खा लेते थे। क्योंकि अब वो यहां केवल जीवन निर्वाह कर रहे हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको हम नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ हम एक काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के संसर्ग में आने से या उनको देखने से हम जो कमा सकते हैं वो ये कि अगर तो हमने कुछ गलत बोल दिया उनके प्रति तो वैष्णव अपराध कमा लिया, या उनके प्रति कुछ, उनको कुछ भी प्रभावित करने की कोशिश करें उस तरह, तो ये हमारा नुकसान है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तो उसके बारे में एक अध्याय है 11वें स्कंद का, उसका नाम है नौ योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। तो महाराज निमि कई तरह के प्रश्न करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें बताइए भक्ति के विषय में, तो वो सारा कुछ बताते हैं और इन भक्तों के बहुत सारे सिम्टम्स बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि फिर हम कैसे डील करें, कुछ और चीज बताइए। तो इन तीन श्लोकों में नौ योगेंद्रों में से एक है हवेर। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया निमि महाराज ने, कि महाराज निमि ने कहा अब कृपया मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाएं, वे कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत बड़े चढ़े, मध्यम स्तर के तथा नवदीक्षित भक्तों में अंतर कर सकूं, वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या हैं और वह कैसे बोलता है, आप विशेष रूप से उन लक्षणों का तथा गुणों का वर्णन करें जिनसे वैष्णव जन भगवान के प्रिय बनते हैं। तो हवीर जी ने बोला सर्वाधिक उत्कृष्ट भक्त, सर्वाधिक उत्कृष्ट का मतलब फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, या हम बोले उत्तम अधिकारी, जो जो जिनके विषय में हम बता रहे हैं कि जिनके हृदय में भगवान का प्रेम उदित हो चुका है, सर्वाधिक उत्कृष्ट भक्त हर वक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है। सब लोगों में हर वस्तु में क्या देखता है, वो देखता है कि भगवान है इसके हृदय में, भगवान का साक्षात दर्शन करता है वो। फलस्वरूप वह हर वस्तु को भगवान से संबंधित ही देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है, अलग नहीं देखता, वो हर चीज को इन रिलेशन टू कृष्णा भगवान से संबंधित देखता है। कोई घटना घट जाए तो वो उस घटना को, उस व्यक्ति को, घटित घटना घटने और घटाने वाले व्यक्ति को, हर परिस्थिति को वो भगवान से ही संबंधित देखता है। तो यह है उत्तम स्तर के भक्त जो हर व्यक्ति में भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि नहीं। दूसरा बता रहे हैं, इसके अलावा दो दूसरे भक्त हैं उसमें बता रहे हैं, द्वितीय कोटि के भक्त जो मध्यम स्तर के हैं उनके भी लक्षण बता रहे हैं और वो क्या करते हैं बता रहे हैं। जो मध्यम अधिकारी होता है ये कहलाता है भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, भगवान को पूरी तरह शरणागत है, वह भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। जो लोग भगवान के भक्त हैं उनका मित्र भी है वो। वह अज्ञानियों पर दया करता है, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जो कुछ नहीं समझते उनके ऊपर दया करता है, उनको प्रचार कर उनकी भक्ति में मदद कर। और जो अबोध है और उनकी जो उनकी उपेक्षा करता है, जो भगवान से द्वेष करते हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते या उनसे द्वेष करते हैं या भगवान के विषय में कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से वो क्या करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, जो मध्यम स्तर के भक्त हैं। तो कई बार हम अगर मान लो मध्यम स्तर के व्यक्ति को देख रहे हैं और उत्तम स्तर के व्यक्ति को देख रहे हैं, उत्तम स्तर का जो व्यक्ति है वो तो ऐसे भगवान से जो द्वेषी भी हैं उनके हृदय में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए वो व्यवहार में उनके साथ भी कुछ नहीं करते, गलत नहीं बोलते। लेकिन जो मध्यम स्तर के हैं वो क्या करते हैं, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सभी भक्तों के प्रति निष्ठावान मित्रता रखते हैं, और जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। और तीसरी स्टेज जो सबसे लोअर स्टेज है अभी, जो शुरुआत है भक्ति की, जहां तो बताते हैं कि उस स्टेज में जो भक्त मंदिर में अर्च विग्रहों की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, अर्थात जो भगवान के विग्रहों को भगवान को भगवान मानता है, खाली उन्हीं की पूजा करता है, उनसे ही डायरेक्ट संबंध रखता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये तो अच्छा भक्त ने बोला है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका भाव भी ये रहता है, भैया मेरा डायरेक्ट संबंध किससे है, भगवान से, बीच में मेरे को कोई पसंद नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, या गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होगी लेकिन और वरिष्ठ भक्तों के प्रति नहीं होगी, दूसरे भक्तों के प्रति नहीं होगी, या सामान्य जनता के प्रति नहीं होगी, हर एक को डिसरेस्पेक्ट कर देगा, है ना, कि मुझे तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हर एक में गलतियां ढूंढता है, अरे इसके अंदर ये कमी है, ये तो बहुत ही गंदा है, मैं तो इतना कर रहा हूँ, ये तो इतना करता ही नहीं है, है ना, ये करता तो है लेकिन इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इससे बढ़िया तो मैं ही हूँ, है ना, ये मुझे क्या सिखाएगा, कल का आया हूँ मैं, इससे ज़्यादा पुराना हूँ, या ये पुराना हो भी तो ठीक है लेकिन मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, है ना, अरे मैंने देखा था ये ऐसे हंस रहा था, ये ऐसे खा रहा था, इसने दो लड्डू खाए थे, मेरे को एक ही मिला था, ये बेकार आदमी है, तो वो इस प्रकार लोगों से नफरत करता है और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करता, कहता भाई अपना तो डायरेक्ट भगवान से लिंक है। और वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है, अभी उसकी इच्छा उसकी चेतना इस संसार में लगी हुई है तो भौतिकतावादी कहलाता है, और निम्न पद निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है, कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। अब नियोफाइट शुरुआत करिए, तो शुरुआती दिनों में इस प्रकार जब श्रवण कीर्तन करता है, भक्तों का संग करता है, उच्च वरिष्ठ भक्तों का संग करके सीखता है, तो ऐसा नियोफाइट डिवोटी भी मध्यम स्तर पर आ सकता है, लेकिन कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी तक तो वो सबके अंदर गलतियां ढूंढता था, अभी तो वो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खोट निकालता था, तो नियोफाइट डिवोटी की पहचान ये है कि वो हर एक के अंदर गलतियां निकाले, उसको सब बेकार लगेंगे, अगर वो किसी की तारीफ भी करेगा तो इसलिए ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं नियोफाइट हूं दूसरों को अपने से आकर्षित करने के लिए वो दूसरों की तारीफ में करेगा, कहेगा मैं देखो निंदा नहीं करता हूं, वो जो भक्त हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, दूसरे वाले जो हैं वो इतने बजे उठते हैं, इतने बजे खाते हैं, इतने बजे पीते हैं, ताकि लोग उससे आकर्षित हों कि हाँ ये तो तारीफ कर रहा है, उसकी सुनना शुरू कर दें। लेकिन एक चीज बताऊं, वो रात को कितने बजे सोता है, वो ये करता है फिर वो करता है, फिर वो कहेगा यार कान बंद कर लो, उसको लगता है फिर ये भागने वाला है, फिर पकड़ता है उसको, नहीं नहीं मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तो खाली बता रहा हूं आपको। तो किस प्रकार लोग जिस चीज का संबंध हमारी भक्ति से नहीं है उन विषयों की चर्चा कर कर आज तक की गई भक्ति पर क्या करते हैं, पानी फेर देते, वैष्णव निंदा करते। इस प्रकार जो नियोफाइट डिवोटी है वो जन्मों मतलब कई कई सालों तक कई कई जन्मों तक नियोफाइट रह जाता है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है, दोष ही दोष देखता है, हर जगह उसको कलह कलेश और पॉलिटिक्स ही दिखाई देती है, वो कुछ अच्छा नहीं देख सकता, उसकी नियत, उसकी उसकी नेचर एक उस मक्खी की तरह हो जाती है जो केवल गंध पर बैठती है। वो जैसे ही किसी को देखता है वो चार उसकी अवगुण देख लेता है, ये अंदर ये बेकार है। तो और इसके एकदम विपरीत शुद्ध भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, जो मधुमक्खी की तरह है जो केवल फूल पर बैठती है और केवल अच्छा गुण देखती है हर एक के अंदर। तो इस प्रकार जो है हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि किस स्तर पर अभी हम हैं। अगर हम सब लोग अभी नव दीक्षित भक्त हैं, एकदम नए नए हैं, हमें गलतियां दिखती हैं, तो हमें तुरंत अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से जुड़ना चाहिए, श्रवण कीर्तन बढ़ाना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, ताकि हम मध्यम स्तर पर पहुंचें, कम से कम मध्यम स्तर पर, ताकि हम लोग उचित व्यवहार कर सकें लोगों से, और फिर ठीक प्रकार से भक्ति करते हुए प्रहलाद महाराज जिसको सर्वोत्तम भक्ति बता रहे हैं उस स्तर पर पहुंचकर भगवान के धाम जा सके। ठीक है ना, समय ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की गौर। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं।